दूसरा, थाई जाति के प्राचीन राज्य गांधार। सियाम में प्रवेश से पूर्व थाई जाति का निवास वर्तमान चीन के दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में था। तब ये प्रदेश चीन के अंतर्गत नहीं समझे जाते थे और यहाँ थाई लोगों के अनेक स्वतंत्र राज्य विद्यमान थे। वर्तमान चीन का प्रांत यूनान, थाई लोगों की स्थिति इसी यूनान प्रांत में थी। चीन के राजा इन राज्यों पर बहुधा आक्रमण करते रहते थे और कभी-कभी उन्हें थाई राज्यों को अपना वशवर्ती बनाने में सफलता भी प्राप्त हो जाती थी। पर चीन इन्हें स्थायी रूप से अपने अधीन नहीं कर सका। 7वीं सदी तक ये इस स्थिति में आ गए कि चीन के भय से मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपना विकास कर सके। यूनान के थाई राज्य को चीनी लोग नानचाओ कहते थे, पर उसका वास्तविक नाम गांधार था। दक्षिण पूर्वी एशिया में वह इसी नाम से विख्यात था। गांधार का एक भाग विदेह राज्य था और उसकी राजधानी मिथिला कहलाती थी। थाई लोगों के इस गांधार राज्य में एक ऐसी लिपि प्रचलित थी जिसका उद्गम भारत में हुआ था। यूनान के स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार अवलोकितेश्वर ने भारत से आकर इस देश को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वहाँ यह कथा भी प्रचलित है कि 8वीं सदी में गांधार के एक राजा का झुकाव भारत की तुलना में चीन की ओर होने लग गया था। यह जानकर भारत से 7 धर्मानुचार्य वहां आए और उन्होंने राजा को पथ भ्रष्ट होने से बचाया। 9वीं सदी के पूर्वार्ध में चंद्रगुप्त नामक का एक हिंदू धर्माचार्य यूनान गया था और वहां उसने अपने धर्म का प्रचार किया था। चंद्रगुप्त मगध का निवासी था और मागध कहता था। चीनी ग्रंथों के अनुसार नानचाओ गांधार के राजा महाराज कहते थे और यूनान की एक स्थानीय अनुश्रुति में वहां के राजवंश को अशोक का वंशज कहा गया है। इस प्रदेश से 11वीं सदी के 2 घंटे प्राप्त हुए हैं जिन पर संस्कृत और चीनी के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। जिन भारतीयों के संपर्क में आकर यूनान के थाई लोगों ने भारतीय भाषा, धर्म तथा संस्कृति को पूर्ण रूप से अपना लिया था और अपने देश को भी गांधार तथा विदेह कहने लग गए थे, उन्हीं के कारण थाई लोगों की बौद्ध धर्म के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा हो गई कि यूनान में भी ऐसे स्थानों की परिकल्पना कर ली गई जिनका संबंध बुद्ध के जीवन के साथ था। गृध्रकूट और बोध गया यूनान में भी परिकल्पित कर लिया गया। यह समझा जाने लगा कि बुद्ध ने जिस पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर ज्ञान प्राप्त किया था वह बोधि वृक्ष यूनान में ही था। ये सब बातें यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सियाम में प्रवेश से पूर्व थाई लोग जब यूनान में निवास करते थे तभी वे पूर्णतया भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ गए थे। यूनान के प्रदेश में विद्यमान थाई लोगों का गांधार एक शक्तिशाली राज्य था। अपने पड़ोसी चीन के साथ उससे संबंध सौहार्दपूर्ण थे, पर यह दशा देर तक नहीं रही। 750 ईस्वी में कोलोफेंग गांधार का राजा बना। उसने ताली फू को अपनी राजधानी बनाई। कोलोफेंग और ताली फू चीनी नाम है, इनके असली भारतीय नाम अज्ञात हैं। कोलोफेंग स्वयं चीन गया पर वहां उसका समुचित सम्मान नहीं हुआ। वह क्रुद्ध होकर गांधार वापस आया और उसने चीन पर आक्रमण कर 32 नगरों व बस्तियों को जीत लिया। उसके विरुद्ध जो सेनाएं चीन द्वारा भेजी गईं उन्हें उसने 3 बार परास्त किया। तिब्बत के राजा ख्री लदे गचन बर्तन के साथ मैत्री कर 754 ईस्वी में उसने चीन को पूरी तरह से परास्त किया। कोलोफेंग की मृत्यु के पश्चात उसका पोता इमोशुन 770 ईस्वी में गांधार के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसने भी तिब्बत से मिलाकर चीन पर आक्रमण किया पर परास्त होकर वापस लौट आया। अब उसने चीन के साथ सुलह कर ली और तिब्बत के प्रभाव से मुक्त होने के लिए उन तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया जो गांधार में रह रहे थे। इमोशुन ने तिब्बत पर आक्रमण भी किया और उसने 16 नगरों को जीत लिया, पर गांधार और चीन की मैत्री देर तक कायम नहीं रही। इमो शुन के एक उत्तराधिकारी ने 820 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर दिया और उसकी सेनाओं को परास्त कर वहां से बहुत से कैदी गांधार ले आया, जिनमें अनेक शिल्पी भी थे। अब गांधार की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसके राजा ने सम्राट की उपाधि धारण कर ली। चीन के तांग वंशी सम्राट को यह बुरा लगा और उसने गांधार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई और 863 में गांधार ने अनाम की विजय कर ली। अब चीन ने यही उचित समझा कि गांधार से सुलह कर ली जाए। 884 ईस्वी में चीन के सम्राट ने अपनी कन्या का विवाह गांधार के युवक सम्राट के साथ कर युद्ध की समाप्ति कर दी और इस प्रकार से इन दोनों राज्यों में फिर से मैत्री संबंध स्थापित हुआ। गांधार का यह शक्तिशाली हिंदू राज 1253 ईस्वी तक कायम रहा। 13वीं सदी में चंगेज खां और उसके उत्तराधिकारियों ने जिस विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसकी सीमाएं गांधार से भी आ लगी थी। किवले खां ने 1253 ईस्वी में गांधार पर आक्रमण कर दिया और उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। विश्व विजयी मंगोल सेनाओं के सम्मुख गांधार देर तक नहीं टिक सका और उसके राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। संभवतः मंगोलों के इसी आक्रमण का यह परिणाम हुआ कि गांधार के थाई लोगों ने दास्ता का जीवन बिताने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा समझा कि अपने देश का सदा के लिए परित्याग कर अन्यत्र जा बसे। उन्होंने दक्षिण और पश्चिम की ओर फैलना शुरू किया और उसकी एक शाखा अहोम असम में जा बसी तथा एक अन्य शाखा शान न उत्तरी वर्मा के पर्वत प्रधान प्रदेश को आबाद किया। पर गांधार के थाई लोगों की मुख्य शाखा दक्षिण दिशा में अग्रसर हुई और वह उस प्रदेश में जा बसी जो थाईलैंड या सियाम कहलाता है, और उन्होंने अपना जो राज स्थापित किया वह आज तक भी विद्यमान है। थाई लोगों के अन्य प्राचीन राज। गुन्नान के गांधार राज के अतिरिक्त थाई लोगों के अन्य भी अनेक राज्य थे जिनकी स्थिति गांधार के समीपवर्ती प्रदेशों में थी। चीनी ग्रंथों में तातिसन नामक एक राज्य का उल्लेख है जिसे वहां ब्राह्मण राज्य कहा गया है। यह मणिपुर और असम के पूर्व में स्थित था। तातिसन के पूर्व में 150 मील की दूरी पर चिंदविन नदी के पार एक अन्य हिंदू राज्य विद्यमान था। एक हिंदू राज इरावदी तथा सालवोन नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में भी था जिसका नाम कौशाम्बी था। यूनान और कंबोडिया तथा सियाम के मध्य में अनेक छोटे छोटे राज थे जिनके नाम अलाविराष्ट्र, खमेर राष्ट्र, सुवर्ण ग्राम, उन्मार्ग शिला, योन कराष्ट्र और हरिपुंजय थे। पाली भाषा के ऐसे अनेक प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें इन राज्यों के पुराने इतिवृत्त संकलित हैं। इन राज्यों के निवासी प्रायः थाई या उससे संबंध जातियों के थे, पर उन्होंने भारतीय धर्म तथा संस्कृति आदि को अविकल रूप से अपना लिया था। इनके प्रदेशों में जो प्राचीन मूर्तियां व अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं उन द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। भारतीय संस्कृति का केंद्र यूनान। नस्ल की दृष्टि से थाई लोगों का भारतीय की तुलना में चीनियों से अधिक सादृश्य है। जिस प्रदेश में वे निवास करते थे वह भी चीन के साथ लगा हुआ था। अतः यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने चीनी भाषा संस्कृति आदि को न अपनाकर भारतीय संस्कृति को अपनाया। पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में भारत से चीन जाने आने के लिए एक स्थल मार्ग भी प्रयुक्त किया जाता था और यह मार्ग यूनान होकर जाता था। बहुत से भारतीय व्यापारी इस मार्ग से चीन जाया करते थे और उनके साथ साथ भारतीय धर्म प्रचारक तथा विद्वान भी सुदूर पूर्व के प्रदेशों की यात्रा किया करते थे। 2वीं सदी ईस्वी पूर्व में चीन के सम्राट ने चांग कियन नामक राजदूत को यूसियों के साथ संपर्क करने के लिए मध्य एशिया तथा बल्क बैक्ट्रिया भेजा था। बल्क के बाजार में चीनी रेशम और बांस की बनी वस्तुओं को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। पूछने पर उसे बताया गया कि दक्षिण की ओर सिंधु हिंद देश है, जहां से ये बल्क लाई जाती है। चीन के सजे चुवन प्रांत से व्यापारिक माल को स्थल के मार्ग से यूनान लाया जाता है और वहां से उत्तरी बर्मा, असम तथा उत्तरी भारत में यूनान का स्थल मार्ग दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में कितना महत्वपूर्ण था, यह इसी एक बात से स्पष्ट हो जाता है कि उस रास्ते से लाए हुए पर्ण को संपूर्ण भारत तथा अफगानिस्तान को पार कर बल्क तक बिक्री के लिए ले जाया जाता था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार ईसा की पहली, दूसरी तथा तीसरी शताब्दियों में चीन से 20 तीर्थयात्री उन्नान होकर भारत गए थे। 964 ईस्वी में चीन के सम्राट ने इसी मार्ग से अपने 300 धर्मदूत इस प्रयोजन से भारत भेजे थे ताकि वे वहां से बौद्ध ग्रंथों का संग्रह कर चीन ले जाएं। वर्तमान समय में इस स्थल मार्ग का अधिक उपयोग नहीं किया जाता, पर प्राचीन काल में यह बहुत प्रयुक्त होता था और भारत के व्यापारियों तथा धर्म प्रचारकों द्वारा इस मार्ग का प्रयोग करने के कारण यूनान के थाई लोगों को भारत तथा उसकी संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता था, क्योंकि भारतीय संस्कृति उत्कृष्ट थी, अतः उन्होंने उसे अपना लिया था।